बड़े बड़े बाल होते हैं वो टूट जाते हैं और एकदम पीले रंग के हो जाते हैं, उसमें रेड से जैसे दोनों में रहे तब प्रतिभा में प्रत्येक पड़े अंतिम रूपये की धारा निकल रही प्रत्येक के रूप में कल थे भर भर नहीं करने में रुक जाए कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं या गोविंद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं प्रियतम कर रहे हैं बात से नहीं समझ पाता पंथ में खरगर कभी जब जब कहते थे दू नेत्र फल शत्रु बढ़े आंखों से पशु की धारा सकती समुद्र जिंदा जिनों गंगा जमुना जैसे समुद्र में गंगा जमुना की धारा होती है उस तरह से वैवर शंख प्राय श्वेत अभिराम पहले जैसे हम कहते हैं शीत वर्ण का था रंग घोरा अब हो गया था सर हम श्वेत के समान शंख के समान श्वेत मान लो रक्त इसी को वैवर्ण कहते हैं कभी कम कम पुरुष है जो समुद्र होता है समुद्र में समझे होती है इसी प्रकार से हर हर काम होती है कंसे कंस प्रभु कभी तो गोविंद प्रभु निकट आ जाए फिर वे मैं प्रभु अचेतन हो गए इस समय गोविंद दौड़ के लिए पीछे से आ सकते हैं देखा करण के लिए जड़े पड़े सर्वत्र सुन शास्त्र में पढ़े थे अलंकार शास्त्र में अब देख करके उन्होंने कहा कि ये तो साधारण आदमी नहीं अब फिर भी उसको मनुष्य मान रहे क्योंकि ये लोग उनको देख करके फिर ये देख रहे हैं कि ये लोग समझे ये राधा जी का ये भाव है उच्च संकीर्तन करे प्रभु सूची का उज्जवल करेंगे प्रभु उनके महत्व सूची का उज्जवल उनके अंग का माध्यम करने और उसके उसमें संकीर्तन करने लगे कान लिए थे आवाज पर ए मत बहुबार कीर्तन करके हरि बोल बोल प्रभु ऐसे बहुत देर तक करने के बाद में धीरे 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 प्राण का संचार हुआ और हरि बोल करते सानंद सकल वैष्णव होने के हरि में उसी ने मंगल खान कर सभी लोग आनंद के हरि में उसी ने मंगल खान कर महाप्रभु जी थी इसी महाप्रभु जी सीधा देखने लगे सब देखने तीन लोगों को देखने कहाँ था कहाँ आ गए ये भी इसके चाहे कहाँ देख देना था और जो कुछ देखना चाहते हैं क्या देखना गोवर्धन में कृष्ण के साथ इसका जो साक्षात्कार हुआ राधा जी का उसी कृष्ण को ये पुनः देखना चाहते हैं क्योंकि उसको देख नहीं सकते वैष्णव देखिया प्रभु अब बात करें अब अंतर दृष्टि से अब बाह्य दृष्टि दिखाई अब अर्थवादी मैंने जिसको देखा था उसको स्मरण है और ये संसार का भी पूरा ज्ञान नहीं है वैष्णव को देखा उन लोगों को देखकर के स्वरूप को चाहिए कि तू कहीं कहलाएगा स्वरूप की गोस्वामी से कुछ कहा क्या कहा गोवर्धन में से मोरे तेरे यहाँ आने का मैं गोवर्धन में था पाइया कृष्ण ने लीला देखी थी ना पाई कृष्ण को देखा सखियों को देखा गायों को देखा किंतु कृष्ण लीला उन्होंने जो हो रही थी यही देखने जा रहा था अभी जी ने तुम हमको वहां से पकड़ करके लेकर के चले आए यहाँ से आज नहीं गेहूं गोवर्धन है आज हमें गोवर्धन लेके आया देखो यदि कृष्ण करें गोचारण गोधन उच्चारण देखा क्या कृष्ण और गोवर्धन पर गलियों को चढ़ा और गोवर्धन के पर्वत में ऊपर में उठ करके चढ़ करके कृष्ण बजाई या बेनू बेनू बजाई बेनू में गोवर्धन ने चौधरी के चौरे का धेनु जो वंशित ध्वनि थी उसमें सखाओं ने सोचा कि हमें सीताम सुदाम पशुदाम को कृष्ण राम अर्जुन दूसरे इन्होंने क्या मैं सोची या सब गोपी लोग तो देख रहे हैं ये कृष्ण मुझे राधा कोई गलिता निशा था चित्र और कोई श्याम श्याम क्या श्याम भद्रा श्यामला भद्रा उधर में चंद्रावली पद्मा सब्जा इत्यादि सभी लोग देख रहे हैं कि हमको बुला रहे हैं मैंने ये अंकित ध्वनि सुन करके और मैं पावर से होकर उधर में दौड़ी चारों तरफ ने देखा कि कृष्ण ऊपर में खड़े होकर के बंसी बजा रहे कैसे बजा रहे कदम बताए थे उसी के ऊपर में अपने शरीर का भाग लेकर के त्रिभंग नदी ग्रुप में कुछ मुस्कुराते हुए और जा रहे हैं आई जा रहा था सब राधा का सब सफिकल समय कोल्या साजन सब सफियों के साथ में साजन साजने मैंने श्रृंगार यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने यदि वो खुद ही राधा रानी है तो राधा रानी को पृथक रूप में देखा तब तो ये हो जाएगा कि फिर उसके आवेश में नहीं थे या इस गुरु राष्ट्र को जान करके मैं राधा रानी नहीं हूँ ये सूचना नहीं देना चाहते इसे छिपा कर भी उसको रख लिया कुछ बतला है इनके कारण जैसे राधा रानी वहां पर पहुंची और अपने सखियों के साथ में श्रृंगार करते हैं तो यहाँ पर यह छिपाया कि मैं वहां गई और सखियों के साथ में सखियां हमारा श्रृंगार कर रही हैं कृष्ण से मिलाने के लिए इस चीज को थोड़ा दूसरे रूप में बदल दिया तब फिर राधा जी का आदेश कैसे है
राधा सिंह को
ही
बोल राधा सिंह को
राधा
सिंह को
राधा सिंह को
नहीं
राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह
को
राधा सिंह को
राधा सिंह को राधा
सिंह को राधा सिंह को
राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को
राधा सिंह को राधा
सिंह को राधा सिंह को
राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को राधा सिंह को
वो एक बार थोड़ा सा वो बहाना बना रहे हैं, बहाना बाजी इसी को तो कह रहा है,
वही से हम कुछ
बहाना बाजी कर रहे हैं, सब कुछ नहीं बताया जाता, कुछ रख लिया जाता। उनको गोपी का भाव हो रहा है ना राधा जी का, किसका भाव लेकर के आए हैं? राधा या प्रणय महिमा?
तो
राधा नहीं या कृष्ण प्रवेश किया अंदर। यहाँ पर ये नहीं बतला कि हमको लेकर के अंदर जैसे उनका भाव कैसे होता, यदि गोपी भाव से वो देखते तो उनको इतना भाव नहीं होता। और राधा जी का अतृप्त किसी के अंगों में ऐसा भाव नहीं होता। ललिता विशाखा जी के लिए भी ये सब संभव बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ वो तो दे देखा सत्य और उसका कुछ दूसरे कुछ नहीं है। राधा कृष्ण प्रवेश का इसको एक तरह से और व्याख्या की जा सकती है। जो किंकरी का भाव मंजरी का भाव जगत में देने के लिए है, इसलिए अपने को कुछ रूप में देखा सत्य जीवों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने को राधा जी की ही किंकरी समझना चाहिए या राधा जी नहीं समझना चाहिए या अपने को ललिता विशाखा इत्यादि नहीं समझना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जब जगत अब उनको बाह्य बाह्य से और बाह्य की तरफ आ रहे हैं, इसलिए अंतर की जो भावना था थोड़ी सी उन्होंने बदल दी या नहीं बदल सकते। राधा जी की किंकरी भी माना जाए,
राधा किंकरी,
राधा किंकरी मैंने की
राधा मानी
ना राधा किंकरी मैंने एक हो समाज पद तो राधा तो जरा था रूप किंकरी
ना हाईचंद्र दक्षी की होती
राधा किंकरी
अपना
इसलिए उसको इस रूप में समझ मंजरी भाव को देने के लिए आए, इसलिए इस रूप में वो देख रहे हैं। किंतु असल में उनका इतना जो भाव हुआ तो उनका तो इतना नहीं होगा जितना इनको होता है। हे न काले तुम सब बोला तान के धरे बड़े यहाँ लग जा आप लोग जा करके यहाँ मुझे पकड़ सकते यहाँ पर लेकर के चले क्यों वहां लीला मुझे वैसा कुछ खरीदे पाई या कृष्ण लीला ना पाई नहीं देते क्यों उनको यहाँ पर मुझे दुख देने के लिए पाई या कृष्ण लीला ना पाई नहीं कृष्ण को देख करके भी उनकी लीला को नहीं देख सका ऐसा बोले महाप्रभु करें नंदन सात दशा देखे वैष्णव करें न रुक महाप्रभु ऐसे चंदन करने लगे वहां पर जितने उपस्थित वैष्णव थे वो सात रुक क्यों उन्होंने भक्ति के द्वारा उनका चित्र था निर्मल है इसे भक्तों को दर्शन करके ऐसा भाव में भी बोल हम लोगों के लिए अभी संभव है। अभी हम लोग अनर्थों से दृष्टि भी सुन करके भी नहीं होगा। यदि इसी कथा को यदि रघुनाथ दास या कृष्णदास कविदास के वर्णन करें उस समय उनका हृदय कैसा हो रहा होगा। वैष्णव लोग भी रोने लगते हैं काले आईदापुरी आरती उन्हें देखी महाप्रभु हरिदास सर्व दामोदर और आय रामानंद को देख करके या गदाधर पंडित जी को देख करके इनका भावांतर नहीं था किंतु इन्हों को जब देखा कौन भारती और पूरी को ब्रह्मानंद को देखा तो देख करके महाप्रभु को सब संभ्रम रामा ने ये मेरे पूज्य है इस रूप में उनको कुछ लज्जा हुई निपट बाह्य है ये प्रभु तुम्हारे बंदिजा महाप्रभु दूज्य ने प्रेमा लिंग बन निपट बाज्य है संपूर्ण बाज्य है इन लोगों को दे सकते हो सब जानवरों को तो दे सकते नहीं क्योंकि उनके अपने किंतु इनको देखा देखा के संपूर्ण रूप से बाज्य हो गया और इन्होंने उनकी वंदना की उनको प्रणाम किया और महाप्रभु रे लुई जॉन बेमालियन और उन दोनों ने उसी संपर्क में जानते हैं इनको प्रेमालोचन किया क्यों किया आज तक हम लोगों ने ऐसा भाव किसी में नहीं देखा था इसलिए ये भक्ति की पराकाष्ठा में होती है ये शक्ति जो आज हम लोगों ने देखा साधारण भक्ति में नहीं है। हम लोग का भी उद्देश्य उतना ही होना चाहिए, उतना तो नहीं है किंतु आप यदि थोड़ा सा भी सुस्त हो जाए ऐसा ही भजन होना चाहिए। जब भजन में हम आविष्ट हो जाए कृष्ण की कथाओं को सुन करके उनका नाम कीर्तन करते हुए रोमांच कम को आकूल चाहिए। प्रभु कहे भूमि के नाम आई जाए तो होंगे पूरी गोसाई कहे तुम्हार नित्य दिख जाए। आप लोग क्यों आए कष्ट करके यहाँ पर कितनी दूर? पूरी गोसाई ने उत्तर दिया तुम्हारा नित्य देखने के लिए हम लोग हैं। नित्य माने क्या? आपकी भाव सात्विक भाव सात्विक भाव विकारित लज्जित किया। प्रभु पूरी के वचन पूरी के वचन से सुन करके उत्तर ये लज्जित हो समुद्र घाट आएगा सब वैष्णव और सब सबको लेकर के समुद्र के किनारे आए घाट पर स्नान करी महाप्रभु घरे से आएगा सवाल महाप्रसाद भोजन करेंगे। फिर उन्होंने प्रसाद भोजन करना सब लोगों को कहा यही तो पहली प्रभु दिव्योन्मार इसको कहते हैं दिव्योन्मार। ये दिव्योन्मार का वचन ब्रह्मांड करी किनारे जहाँ स्वभाव ब्रह्मांड कल के नारे जहाँ रस प्रभाव ब्रह्मा ने भी ऐसी चीजें नहीं दिखी है। श्री गमन लीला रघुनाथ दास चैतन्य सौ कल को वृक्ष बढ़िया छह प्रकार चैतन्य सौ सौ कल वृक्ष में रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन किया। समीपे नीलाग्रे जटत गिरिराजकलनाये गोदेवो वर्धरगिरिपति शुक्ला प्रमदुधावंसितो गणैस्वर्गैरौ गौरांगो हृदय हनुमानमदय जटगिरि को देख के महाप्रभु ब्रज में गिरिराज गोवर्धन को दर्शन कर भाव में विभूत हो गए। चैतन्य महाप्रभु बड़े वेग से दौड़ने लगे साधु सुने गोवर्धन पर वैष्णव गौ के द्वारा देखती उसी चैतन्य महाप्रभु इन भावों से परिपूर्ण अर्थशास्त्री भाव से पूर्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में उदित होकर के कब हमें उन्मत्त करा दें प्रार्थना कर हेरे प्रभु जत कल्या अलौकिक लीला के बुझते पारे महाप्रभु खेला। इसी तरह से कितनी कितनी लीलाओं को उन्होंने प्रकट किया अलौकिक और अलौकिक लीलाओं उनको कौन समझ सकता किस लिए कैसे कब क्या कर रहे हैं कैसी भावना आती है वही समझ सकते हैं जिन पर उनकी लीला दूसरे मिल पर सब दामोदर राय राम रूप गोस्वामी यदि हो वो तो समझेंगे सनातन गोस्वामी इत्यादि संक्षेप हमने संक्षेप में उनका उनकी लीलाओं का कुछ दिग्दर्शन किया। ऐसे अनंत लीलाएं उनकी हैं यहाँ यही सुने पाए कृष्ण चरण जो लोग उनको खुद अच्छी तरह से श्रद्धा प्रभु के साथ श्रवण करेंगे वो कृष्ण के चरण पर लोग उसी रूप में पाएंगे। रूप रघुनाथ प्रभु जिन लोगों ने रूप और रघुनाथ जी के चरणों में जिन्होंने आश्रय किया है के चरण के सामने पहले उन लोगों के लिए चैतन्य चैतामृत करते हैं उनको सुना रहे हैं कि उनकी भी ऐसी ही भावना है। रूप रघुनाथ को इसलिए प्यार रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को विचार को उन्होंने लिखा उज्ज्वल मणि में और भक्ति स्वामी के रूप और अपने ग्रंथों में किंतु इसका संपादन कैसे हो सकता है अपनी भक्ति को रस में कैसे परिणत कर सकता है इसको सीखना पड़ेगा कहाँ उनके प्रिय शिष्य रघुनाथ दास उन्होंने प्रारंभ से मन शिक्षा से आरंभ कर अपने समस्त ग्रंथों में रस शासन जो कैसे किया जाता है उन्होंने बताया। उन्होंने रूप गोस्वामी ने इन सबका मार्मिक तत्व वर्णन किया एक एक रस किसको कहते हैं, क्या क्या होता है, और ये उसको अभिष्ट होकर के कैसे भक्ति कर किया जाएगा, जिसके लिए सब भाव है। इससे रूप को स्वामी के पढ़ने से ही नहीं होगा, रघुनाथ दास को स्वामी से भी पढ़ना होगा, इन दोनों की कृपा में सब होगा। इसलिए कहते हैं कि चरणार्थ के स्वामी पहले से सुधार से सुधार की से चलने के सामने कहे आपने उत्कंठा था। विशाखा को कौन कर सकता है,
राधा
जी का सिर्फ तुम्हें चाहता को और ललिता को कोई उतार सकता है अपने भाव को? तो यहाँ पर कोई साधारण नहीं होती कि अपने मन को भाव विचाता जी से बतला रहे हैं। इसलिए यहाँ से क्या प्रसंग है, ये राजा जी के भाव में उन्मत्त है। उद्गुणा किस अवस्था में होता महाभाव की स्थिति, क्योंकि रूढ़ भाव प्रसंग यहाँ से चंद्रमा करूँ अभी रूढ़ भाव में अधिरूढ़ भाव में उपस्थित होकर के और कृष्ण के जीवगणित भावों को यहाँ दिखला करके राधा प्रेम की भावना को अर्पा करते। कृष्ण का भी राधा उत्पंथित अर्थवान राधा जी का उत्पंथित कैसे श्रीमती जी नंदगांव में रास्ते में कृष्ण का मिलन हुआ। कृष्ण को देख करके अपने हार इत्यादि को छोड़ करके पीछे से देख रहे हैं। कितने कितने भाव हैं दोनों दूसरों के प्रति आकर्षित होते हैं। के साथ में यशोदा जी के मन में जाकर के मैया यशोदा जी का चरण बंदन करती है और यशोदा जी के आंख छलछला जाती है और अपनी अपने बेटे के समान उनको हम समझा। सब कुछ मुझे देखा जाता है कि यशोदा कहते हैं तू हमारे पीछे जैसा हमारा प्यार है तू भी हमारे
प्यार
आशीर्वाद देती है और फिर रोनी के घर में उनको समर्पित कर देती है। कहते हैं कि हमारे घर में सारे भंडार हैं, रोनी भी उसकी सबकी व्यवस्था करेगी देगी और रसोई बनेगी ये बेटी बनेगी बनाती है रसोई। जो राजा जी कृष्ण के विरह में ऐसे उत्पन्न होती है ये ठंडी चीज भी चुनौत कर जाती है जैसे गंभीर क्या समय से गंभीर क्या आज यहाँ पर 20-25 चीजें जल रहे हों या कितने चीजें जल रहे हैं और उसमें लकड़ी दी जा रही है चारों तरफ से ताप है और उनको ये सब ताप की शीतल लग रहा है कृष्ण के मिलन से। रसोई बन जाने के बाद में रसोई भैया ने जो गाड़ी ने सब लोगों को कथाओं से सही तरीके से बुझाया रमिष्ठा जी ने बड़ी चतुराई से कृष्ण का औचित्य उन्होंने कहा जैसे ये जो प्रसाद दिया है ठाकुर जी को जो भोग लगाया है कृष्ण के भोजन के अतिरिक्त हुआ ये तुम श्रीमती राधिका जी को दे दो और उनको अच्छी तरह से छिना और सब तक सदंग देकर सौगंध देकर सब सतक देकर ये उनको खिलाने के लिए कहा। किंतु वो नहीं खाएंगे जब तक कि कृष्ण का उसमें वो जब चतुराई से श्रीमती कनिष्ठा जी बड़ी चतुराई के साथ में कृष्ण के जो अच्छे अच्छे जो पदार्थ दिए गए हैं उनको चतुराई से निकाल करके उसके अंदर भी मिला देती है जैसे किसी को मालूम नहीं किया अलग से वो है और वो उनके पास में भेजवा देती है तो भी खाते हैं दोनों का मिलन होता है कृष्ण और गोचारे के बीच कुर्बान दिए चले गए वहां जाकर के जो चाहने किया और पूजा में कृष्ण को पूजा करने के बाद में जो सोदानंद इत्यादि लौट आए सखियां भी लौट आए किसी प्रकार से अब विरम उनको नहीं कहा जाता किसी प्रकार से जाओ में अब वो कोई बहाना बनाती हैं कि हम कृष्ण से दर्शन करें और उसी समय में इतनी पीड़ा में तप्त हो जाती है यदि शाखा जी से और ललिता जी से देखा नहीं जाता तो वो रूप मंजरी को भेज देती है कृष्ण को देखने के लिए किस स्थिति में कहा और कहते हैं और ये बड़ी चतुराई से जाकर कभी से मिलती है और उत्कंठा देखती है जो उनसे उनकी मिलने की उत्कंठा कितनी है और नहीं और जगाती है उत्कंठा जगाने के बाद में वहां से आत्मा श्री कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन है। उनकी अब परीक्षा लेते हुए वहां पर कृष्ण की परीक्षा भी हो रही ना। ये जो जीव का समय है इतनी स्वतंत्रता उनको है जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं। इसी को यहाँ पर कृष्ण के लिए राधा दो पाठा समय कृष्ण गोवर्धन की तराई में गायन को करा रहे पार्टी में किसी प्रकार से उनके रूप में लेने से निकल। उन्होंने इंद्र से कुछ ऐसी चीज की जिससे कि ये हो उन्होंने कमल की कोई माला उनको लेकर के उनको कमल का फूल का मिलना मैंने कमल की माला का मिलना मैंने जो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ये और इसी के बीच में इतनी कंठी चीज है जो उनसे राह नहीं जाता इनमें दिशा का जी को अपने उस कंठा का कारण ये लगता है इसी समय अभी जाओ की बात कई लोग पढ़े आप पढ़े मन सारा तो फिर और कुछ सुना है घूमने पर दिया दिला इसलोग अपने आप पार करते हैं और उसको सुना रहे हैं उसका अर्थ बतला रहे हैं स्पेशल आप रूप स्वाई जिसका अर्थ कर रहे हैं। इसलोक ये है समुदाय जानित सिंधु भूमि रमना कृष्ण और कृष्ण प्लाव करना मंदिर सौंदर्यानु पहले इंग्लिश श्लोक यह श्लोक कहां से आया इस समय से सामग्री का वर्णन और ये श्लोक है गोविंद पृथ्वी रचयिता कौन है नहीं कृष्णदास कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे 100 वर्ष बाद में आए 100 वर्ष और महाप्रभु वहां पर बैठे थे कैसे बतला रहे हैं इस श्लोक को ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया इसलिए ये उनका अपना नहीं है ये समझो मूलत ये चैतन्य महाप्रभु थे उससे राधा भाव में अविष्ट होकर के अब उसी को स्वरूप दामोदर जी अपनी कर्चे में लिख लिया और वो कर्चा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास और उन्होंने ये कर्चा उनको सुनाया तब गोविंद लीला की रचना हुई उसमें ये श्लोक ऐसे संदेश नहीं तो ये संभव पर इसलिए कृष्णदास रघुनाथ गोस्वामी अनेक चैतन्य महापुरुष से मुख से निकला हुआ यह श्लोक है। इसलिए आपके श्लोक तो वो है और एक इसको भी रख लो और एक श्लोक और है
नौ प्रेम
नौ प्रेम सुने धरा सुने सब भाग्य था धर्म प्रकार प्रेम ब्रह्म सुने धरा सुने हर जाम के सब भाग्य धर्म प्रकार तुम बल के दिलाश्याम अवलोकन दिया ये सब महाप्रभु जी के समुदाय यहाँ पर जगत यहाँ पर लिखा है जो गोविंद लीला में श्लोक है जैसे उसको लिखे रूप में सब लोग चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में पहले ये सब दामोदर राय रामानंद को गंभीर में ये बातें कह करके उसका अर्थ नहीं करते लीला में वर्णन करने का या श्लोक का अर्थ प्रकाश करना या व्याख्या करने की शैली इन्होंने कहां से प्राप्त की रघुनाथ दास को सामने देखी थी। जहां जहां वो रघुनाथ दास जी ने कहां से सीखा, महाप्रभु से स्वयं भी सत्यदामोदर जी उनको बतला रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित होकर के बतला रहे हैं। देखो आज ऐसे हुआ, आज वो उन्होंने ये बात किया और उसका इतना सुंदर अर्थ किया उसको वो लोग गलत में कल्पना नहीं कर सकते। कौन कह रहा है सत्य और रघुनाथ दास उस समय को पुजा रहे हैं उस समय को। तो सौंदर ज्ञान सिंधु भंग लगना चिता विषम प्लावता अरे लोगों का कृष्ण के लिए सौंदर्य का सौंदर्य वो अमृत का समुद्र है। समुद्र पास में खड़े हुए पर्वत को उसके चरणों को स्पर्श करता है समुद्र का पानी। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी उसके पास में खड़ा हो तो ये क्या करेगा समुद्र का पानी, उछल करके उसके चरण को धो करके बस शांत होकर के लौट गए। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं हम तो लड़ना किस अदृषम प्लाव है हमने तरंग उसके संगीत भी जो ये समुद्र का पानी किसी पर्वत के अंदर में नहीं जाएगा, किंतु वो पानी क्या करता है
पर्वत
जहां भी पर्वत के अंदर में कोई भी छिद्र है कोई भी जगह है कहां प्रांत खास खास जो कुछ है अंदर बाहर पर और ये क्या करता है पर्वत के बाहरी प्रदेश को चरण को स्पर्श करके निकलता। अब वो पर्वत क्या है इधर तो समुद्र का जल इधर तो हुआ हिमालय इत्यादि का और जो पर्वत या पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियां दक्षिण में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये पहाड़ियां हैं मद्रास के साइड में एक और बॉम्बे के साइड में उत्तर वो क्यों पहाड़ियां हैं फिर सीधा चलाए आती हैं नीचे से धो सकते पहाड़ अचल अचल अटल वो फिर चपनी अचल बचता है सबसे मस्त नहीं होगा बहुत ऊंचा कभी भी हिलने वाला नहीं जोड़ने वाले उसकी जड़ें बहुत मजबूत उसके शिखर को छुपाना उसको डुबा देना ये समुद्र के लिए कठिन है। अब उसको तुलना मूलक दृष्टि से हम अब कृष्ण पर लाए कृष्ण का रूप आदि जो मार्ग दिव्य है वो जो अमृत का सिंधु है उसमें तरंगे इस समुद्र से कोटि गुण ऐसी उठती है और ये उस पर्वत के शिखर को भी अपने अंक में समा लेती है और रग रग में प्रवेश कर उसको जल में बना देती है। अब ये पर्वत क्या है ये तो कृष्ण का रूप तो हुआ अमृत का समुद्र और ये समुद्र की तरंगे भी उस रस रूप से जो चित्त में आने वाली जो भाव है उसकी तरंगे। पर्वत क्या है नारी चित्त का है नारी माने क्या गोपियां और दूसरे नारी नहीं उनका प्रतिपत्त धर्म अरुंधति और अनसुईया इत्यादि से भी ऊंची है अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, इनका प्रातिपत्य जगत में जारी है। सीता जी का भी पाठी ये सब लोग हैं, किंतु गोपियां जो हैं ब्रज की, इनका जो पाठी व्रत धर्म है वो हिमालय के ऊपर से भी इन लोगों को भी पार करता हुआ बहुत ऊंचा है। इन लोगों का भी जो पाशीपत धर्म है अरुंधति और अनुसुईया का, ये पाशीपत ठीक नहीं है। क्यों? इनका चित्त कृष्ण में और अपने पति में भी है। वशिष्ठ जी और अत्रि ऋषि में भी इनका अपने अपने पतियों के पति, या कृष्ण के पति या राम के पति भी है, और अपने धर्म के प्रति भी है, लोक लज्जा के प्रति भी है, ये सब इनमें। और गोपियों का पाठी पत्र कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। असल और असल कहां तक उसकी जड़ है कोई चीज नहीं, और कभी भी हिलने वाली नहीं है। इसलिए अरुंधति और अतिरिक्त उनकी आख्या भी उनकी पाठी पत्र धर्म की वांछा करती है, अभिलाषा रखती है। इसलिए गोपियों का जो धैर्य, गोपियों का पातिवत धर्म, उनकी लज्जा, ये एक एक शिखर है। जैसे हिमालय पर्वत में बहुत से शिखर है, गौरी शंकर, एवरेस्ट और कौन कौन कितनी ये चोटियां हैं, ऐसे गोपियों की ये सब चोटियां हैं। क्या किसी भी अपने धर्म से लिए विचलित नहीं होगा। ये एवरेस्ट की चोटी है और धर्म को भी नहीं छोड़ सकती, इस तरह से ये अटल है और बहुत ऊंची है। किंतु फिर भी कृष्ण का यह रूप जो समुद्र है, उसकी एक तरंग से ये सुर मार्ग होकर के समुद्र में वो, इसलिए उसकी तुलना की। इसलिए समदार जामृत सिंधु भंग ललना चित्त, ललनाओं का चित्त जो है वो कैसा है, अत्रि पहाड़ ललना मैंने सभी एक से एक, ये सभी इसी तीन से सात प्रकार की गोपियां हैं, एक एक ये क्या है शिखर, और इनमें आठ शिखाएं चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची हैं, और इन आठ शिखाओं के बीच में एक जो है श्रीमती राधिका, वो सुंदर उसकी मान लीजिए कितनी ऊंची है, किंतु समुद्र की एक कण आकर के तरंगों की एक कण ऐसी प्रबल है कि उस सबको उसी तरंग को ही विवाद होती है। उसी को यह कह रही है।